ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون یہ سورہ الماعون اس کا آخری کلمہ جو ہے الماعون اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ الماعون رکھا گیا اکثر حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مدنی ہے ویسے بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ولا یحض علی طعام المسکین تک جس میں مشرکین کی حرکتوں کو اور ان کے کرتوتوں کو بیان کیا گیا ہے تو گویا یہی مناسب ہے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا اور باقی آدھا جس میں منافقین کی حرکتیں اور ان کے کرتوت ذکر کیے گئے ہیں تو یہ مناسب ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا پہلا اوپر والا آدھا مکہ میں باقی مدینہ منورہ میں یہاں یہ جو اوپر والا آدھا ہے اس کے شان نزول کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب کسی صاحب مال آدمی کا انتقال ہونے والا ہوتا تھا تو وہ اس کے پاس جا کر کے کہتا تھا کہ تم اپنے یتیموں کو میرے حوالے کرو، میں ان کی کفالت کروں گا، ان کی خبرگیری کروں گا، اور دوسرے ورثاء ان کو نہ ستائیں، ان کا حق ضائع اور برباد نہ کریں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ इस तरह गोया मरने वाले से उनकी यतीमों की जिम्मेदारी खुद लेता था और इस तरह उनके माल के ऊपर भी काबिज होता था और उसके बाद उन यतीमों के हुकूक को ज़ाय करता था, उनको नंगा भूखा छोड़ देता था। ऐसे ही यतीमों में से एक यतीम एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, जो उसका सताया हुआ था, आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको लेकर अबू जहल के पास गए और उसको क़यामत का डर दिखला करके कहा कि डर क़यामत को अल्लाह ताला के सामने क्या जवाब देगा और इसका हक अदा कर। तो उसने कहा क़यामत क्या चीज़ है, मैं क़यामत वगैरह को मानता वानता नहीं हूँ। उसके इस जवाब से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिल गिरफ्ता हुए, गमगीन हुए, तो अल्लाह तबरक ताला की तरफ से ये सूरत गोया नाजिल की गई। बाद दूसरी रिवायतों में दूसरे कुफार के भी नाम आते हैं, किसी ने आसिम ने वाई का, किसी ने वलीद ने मुगीरा का, किसी ने अबू सुफियान का नाम भी लिया है। गोया मुश्तरक तौर पर ये हालत उन लोगों की बयान की गई है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे। दोबारा पैदा किए जाने और उसके बाद आदमी को उसके आमाले सालेहा का अच्छा बदला और बुरे आमाल की बुरी सज़ा मिलने के कायल नहीं थे। ऐसे लोगों ही का किस्सा है, इसलिए उसकी शुरुआत की गई अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उसे देखा जो जजा व सजा को झुठलाता है। दीन सूरह फातिहा में आया था, मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जजा का मालिक, जिस दिन अल्लाह तबरक ताला निकोकारों को उनके नेक आमाल का अच्छा बदला और गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा देंगे। तो ये गोया जजा और सजा उस दिन दी जाएगी, इसलिए उसको यौमुद्दीन कहा गया। तो दीन कहते हैं उसी बदले को। तो गोया बारी ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाते हैं, क्या देखा आपने उस आदमी को जो जजा और सजा को झुठलाता है, यानी जो इस बात को तस्लीम नहीं करता कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे और उस दूसरी जिंदगी में जिन्होंने नेक आमाल किए उनको नेक आमाल का अच्छा बदला और जिन्होंने गुनाह किए थे उनको गुनाहों का की सजा दी जाएगी। जाहिर है हम दुनिया में देखते हैं, एक आदमी है जिंदगी भर वह अच्छे और नेक आमाल का एहतमाम करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके जिंदगी के दिन तकलीफों में गुजरते हैं। उन नेक आमाल की वजह से उसको कुछ दुनिया में भलाई पहुंची हो, अच्छे हालात आए हों, ऐसा नज़र नहीं आता। और बहुत सी मरतबा ऐसा देखते हैं कि एक जालिम है, बदकार है, अपनी बदकारी और जुल्म ज्यादती के अंदर फल फूल रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती का मामला करता है, पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरती है और हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि उसको उन बुरे कामों की वजह से दुनिया में कोई तकलीफ पहुंची हो। तो आखिर अगर दोबारा जिंदा होने वाले नहीं हैं, दोबारा की जिंदगी नहीं है, तो फिर इनका क्या। अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। कुरान में बारी ताला फरमाते हैं कि जो ईमान वाला है वो भला वो फासिक और बदकार की तरह हो सकता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। दोनों को, निकोकार को अपनी नेकी का और बदकार को अपने गुनाहों का बदला, नेकोकार को अच्छा बदला, बदकार को उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो गोया एक कुदरती निज़ाम है, उसका तकाजा यह है कि दोबारा की जिंदगी हो, आदमी दोबारा पैदा किया जाए, ये अकली दलील भी है उसकी। तो बहरहाल यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाते हुए तसल्ली दे रहे हैं, क्या देखा आपने उस आदमी को जो जजा और सजा को झुठलाता है, यानी आखिरत का कायल नहीं है। तो अब जाहिर है जो आखिरत का कायल नहीं है तो उससे ये उम्मीद रखना कि वो हकदारों के हक को अदा करेगा फजूल। आगे उसकी कुछ और अलामतें और उसके कुछ और करतूत भी अल्लाह तबारक तआला ने बतलाए। फज़ालिका अल्लज़ी यदुउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। अब देखो ये यतीम को धक्के देना गोया इस आयत में उस आखिरत के इनकार करने वाले की एक निशानी के तौर पर बतलाया गया। ये कह कर के गोया ये कहा जा रहा है ये बतला करके कि ये हरकतें असल तो ऐसे ही आदमी की हो सकती हैं जो आखिरत का कायल न हो, जो जजा और सजा को मानता न हो, उसका इनकार करता हो। अगर किसी मोमिन में भी पाई जाती हैं तो उसके अंदर ईमान का तकाजा यह है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, असल तो ये हरकतें काफिर ही की होनी चाहिए। फज़ालिका अल्लज़ी यदुउल यतीम, अब यतीमों के हुकूक को ज़ाया और बर्बाद करना ये भी बड़ा ख़तरनाक है। क़ुरान पाक में अल्लाह तबरक तआला ने उसकी तरफ भी मुतवज्जे किया है। ज़माने जाहिलियत में अरबों के अंदर दस्तूर ये था कि बच्चा अगर नाबालिग है छोटा है तो उसका माल उसको हाथ उसको देते नहीं थे, जो बड़ा होता था वही माल ले लेता था। उनके यहाँ एक जुमला था कि जो आदमी घोड़े पर सवार हो, हाथ में नेजा और तलवार ले और दुश्मन का मुकाबला करे, वही हकदार है इस बात का कि उसको विरासत और माल दिया जाए। अब जो बच्चा नाबालिग है उसमें उसकी ताकत नहीं है तो उसका हक वो लोग मार लिया करते थे। पुराने पाक में यतीमों के माल को इस तरह जो है खा जाने और उसके हक मारने पर बड़ी सख्त वहीने सुनाई गई। इन्नल लदीना याकुलूना अमवाल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, कि जो लोग जुल्मन बतौर जुल्म के यतीमों का माल खाते हैं वो अपने जो है पेट के अंदर जो आग डाल रहे हैं। आग, अल्लाह ताला ने कुरान में उसको आग से ताबीर किया। वह ये बड़ा खतरनाक अमल है, बड़ी खतरनाक हरकत है, इससे अपने आप को बचाना चाहिए। अब देखो हमें भी अपने माशरे का जायज़ा लेना चाहिए। हमारे माशरे में कोई ये तो गोया कहने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं यतीम का हक खाता हूँ, लेकिन हमारे माशरे के अंदर जो कुछ जो है सिलसिले जारी हैं, आम तौर पर ऐसा होता है कि जब किसी आदमी का इंतकाल होता है तो फौरी तौर पर विरासत तकसीम नहीं की जाती, बल्कि अगर कहा भी जाए उनको कि भाई शरीयत का हुक्म है अब किसी का इंतकाल हो जाए तो शरीयत ने उसके माल में वारिसों के जो हिस्से रखे हैं उसके मुताबिक फौरी तौर पर उसको तकसीम करे कि हर एक हिस्सेदार को हकदार को उसका हिस्सा और हक पहुंचा दो। तो लोग कहते हैं मौलवी साहब अभी तो कफन भी मैला नहीं हुआ और जो है आप बांटने की बात करते हैं, और ये कहाँ, ये तो अजनबी पने की बातें हुई, हमारे हम तो आपस में मिलजुल करके रहते हैं, ऐसी बात करेंगे लेकिन देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद ही आपस में झगड़े शुरू होते हैं। एक कहेगा इसने ज़्यादा खा लिया, दूसरा कहेगा कि मेरे हिस्से में कम आया, ये उसी का नतीजा होता है। ख़ास करके अगर वारिसों में सगीर और नाबालिग हो, ऐसे कभी बाप का इंतकाल हो जाता है, उसकी कहे औलाद में एक दो लड़के तो बड़े होते हैं बालिग, बाकी भाई बहन जो हैं वो छोटे हैं, तो ज़रूरत इसकी है, शरीयत ने इसकी ताकीद फरमाई कि हर एक के हिस्से बाकायदा तकसीम करके अलग कर दिए जाएं और जो नाबालिग का हिस्सा है उसके नाम से उसको महफूज कर लिया जाए। उसका जो ज़ाती ज़रूरी खर्च है वो तो उसमें से लिया जा सकता है, उसके अलावा उसमें से एक पाई भी नहीं ली जा सकती। अब हमारे यहाँ ये होता है कि तकसीम नहीं करते, उसका हिस्सा मुश्तरका माल के अंदर मौजूद है और सब उसको खाते पीते हैं। आम तौर पर ऐसा होता है कि यतीम का अपना ज़ाती जो खर्चा है उससे ज़्यादा उसके माल में से लिया जाता है। नतीजा ये होता है कि इस तरह लोग जो हैं यतीम के माल को खाने के जुर्म में गिरफ्तार होते हैं, मुब्तला होते हैं और कहने को यूँ कहते हैं कि हम तो यतीम का माल नहीं खाते। हालांकि ये वही उनको भी लागू पड़ती है। चुनांचे जब ये आयत नाजिल हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो सहाबा इतने डर गए कि कि जिनके यहाँ यतीम हुआ करता था उसका सब माल अलग किया, उसका खाना पकाना भी अलग अपने साथ में, ताकि उसका जो है यतीम का माल खाने की नौबत ना आवे। अब उसकी वजह से ये हुआ कि कुछ दुश्वारियां पेश आई, उस यतीम के अकेले के लिए अलग चूल्हा या अलग खाना पकना और दूसरे लोगों के लिए अलग पके, उसकी वजह से दुश्वारियां। उस पर फिर कुरान पाक ने तंबीह भी फरमा दी कि भाई अगर जो है इन तुखालितु हूं फैखवानकुम फिद्दीन, अगर मिलजुल करके रहते हो तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मिनल यालमुल मुफसिदा मिनल मुसलिह, जो यतीम के माल को बिगाड़ना चाहता है, खाना चाहता है उसको, और जो उसको ठीक रखना चाहता है अल्लाह खूब जानता है। अरे जिसके दिल में नीयत है यतीम के माल की हिफाजत की अल्लाह खूब जानता है, इसलिए अगर मकसद उसके माल को जाया होने से बचाना है और उस सूरत में ये कभी अलग करने अलग पकाने की सूरत में उसका उल्टा अलग से ज्यादा एक आदमी का खाना अलग पकाया जाए तो खर्चा ज्यादा होगा, अगर इसलिए मिला कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन हिसाब बराबर पक्का रखो ताकि उसका जो जरूरी ये है उससे ज्यादा उसके हिस्से में खर्चा न डाला जाए। तो बहरहाल ये आयत नाजिल हुई तो फिर सहाबा ने इस तरह जो है साथ किया। तो कहने का हासिल ये है कि शरीयत मुतहरा ने यतीम के मामले में बड़ी बहुत ताकीद फरमाई है। आम तौर पर ऐसा होता है खुद माँ बाप का मसला कि भाई बच्चों को जो हदिया दिए, बाद मरता बच्चों के नाम से हो, उनका ये कह करके भाई उसके लिए है और वो बाप के पास है, तो बाप बाप होने के बावजूद उस बच्चे वाले माल को जो है उसकी जो हकीकी ज़रूरतें हैं उसके अलावा में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करेगा तो ये उस सूरत के अंदर वो कोई ज्यादती करने वाला करार लिया जाएगा। ये तो ये नाबालिग के माल के अंदर बड़ी एहतियात बरती गई है, उसका लिहाज करना चाहिए। यहाँ तक फुकहा ने लिखा है कि आपने अपने बच्चे के लिए कपड़े बनवाए, नीयत उसके लिए बनवाने की थी, बनवाए तो अब जब उसको पहनाए वो उसके हो गए, अब जब बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद उसी के कपड़े वो जो साइज छोटा पड़ गया बाद वाले भाइयों को देते हैं, फुकहा ने ना लिखा है तो जायज नहीं है। अगर आपको देना है तो आप क्योंकि अब तो ये मिल्कियत थी किसकी, उसी नाबालिग बच्चे की, आपको उसमें तसरुफ करने का हक नहीं। अगर देना चाहते हैं तो फिर बाकायदा उसकी कीमत जो हकीकी कीमत है इस वक्त वो तजवीज करो और उतनी कीमत उसके नाम पर अलग जमा करो, फिर वो ये। इसीलिए फुकहा ने एहतियात इसी में लिखी है कि बच्चों को मालिक बाकायदा न करार दिया जाए, अपनी मिल्कियत में रखते हुए उनको पहनाया जाए। तो बहरहाल ये बड़ी शरीयत ने एहतियात रखी है, लेकिन आम तौर पर हमारे यहाँ इसकी तरफ देखा नहीं था। बच्चों के नाम से जो हदिया आते हैं उनके पैसे आते हैं, तो बहुत सी जगह वालिद वगैरह भी, और बहुत सी जगह आम तौर पर औरतें तो उनके हिस्से के पैसे खर्च ही कर डालती हैं। बहुत ख़तरनाक है ये, बहुत ख़तरनाक। कल को क़यामत में हिसाब देने का वक्त आएगा तो पता चलेगा। तो बहरहाल ये नाबालिग का मसला बड़ा, ये तो मुतलक नाबालिग की मैं बात कर रहा था, और वो भी अगर यतीम है, जैसे कि शोहर का इंतकाल हो गया तो अब माँ भले माँ है इसकी, लेकिन बच्चा तो नाबालिग होने की वजह से यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया है तो उसका मसला बड़ा संगीन है। तो बहरहाल यहाँ अल्लाह तबरक तआला फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्का देता है। तो ज़रा हमें भी अपना जायज़ा लेकर के सोचने और देखने की ज़रूरत है, कहीं हम तो इस वईद में नहीं आते। हर आदमी देख ले अपने आप को, अपने हालात का जायजा ले ले। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, और वो मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता, यानी किसी गरीब को खाना खिलाने और देने की तरगीब, खुद तो क्या खिलाता, किसी दूसरे को भी ये नहीं कहता कि भाई गरीबों को खिलाओ, यानी वो इस दर्जे का बखील है, खुद भी नहीं देता, खुद तो देता नहीं लेकिन दूसरों को भी खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। अब देखो एक आदमी जो है अगर उस खाना नहीं खिलाता गरीबों को मिस्कीनों को, इसलिए कि उसकी इस्तेआत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है उसकी, कोई हरज की बात नहीं, गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका हो तो इन मिस्कीनों और गरीबों को अगर वो वो भूख में मुब्तला है, हाजतमंद है, तो उनको खिलाने की लोगों को क्या देनी चाहिए? तरकीब, मुसीबत ज़दा की मुसीबत, जैसे आजकल या केरला के सैलाब ज़दगान का मसला है, उनके लिए तरगीब देना। तो खुद अगर नहीं ये कर सकते तो तरगीब देनी चाहिए। अलबत्ता ये जानता है कि इसको मैं तरगीब दूंगा तो उसके ऊपर वो कोई तवज्जो देने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा नाराज होगा, तो उसके ज़रूरी नहीं है तरगीब देना। ऐसे लोग जिनसे उम्मीद व तवक्को हो उनको तरगीब दी जा सकती है, और अगर वो भूख की वजह से बिल्कुल मरने के करीब हो जावे तो उसके लिए खुद अगर ताकत है तो खिलाना, और नहीं है तो दूसरों को तरगीब देना वाजिब लिखा है। बहरहाल यहाँ और मिस्किन को खाना देने की तरगीब भी नहीं देता, यानी खुद तो क्या खिलाता, दूसरों को भी तरगीब नहीं देता। अब यहाँ ये जो गया जजा और सजा का इनकार और यतीम को धक्के देना और मिस्किन को खाना खिलाने की और खाना देने की तरगीब न देना, ये तीन बातें जो है वो तो किसकी बतलाई? मुशरिकीन के मुतालिक। आगे फवैलुल लिल मुसल्लीन। अब ये जो सूरत का दूसरा हिस्सा है, आखिरी हिस्सा, चूंकि जो ये जो अंदर जो बतलाई गई है ये बुराइयाँ, ये मुनाफिकीन में थी, और मुनाफिकीन मक्का में नहीं है, मक्की दौर में मुनाफिकीन नहीं थे, मदनी दौर के अंदर मुनाफिकीन वजूद में आए हैं। इसलिए बहुत से अहले इल्म यूं कहते हैं कि ये गया आखिरी हिस्सा वहाँ का नाज़िल हुआ। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए, अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, नमाज से गफलत बरतते हैं। अब नमाज से गफलत बरतने की बहुत सी सूरतें हो सकती है कि मसलन मुनाफिकीन बहुत से वो थे कि कोई देख रहा हो तो नमाज पढ़ते थे, कोई न देख रहा हो, तन्हाई में हो तो छोड़ देते थे। आज हमारे मुसलमानों में भी ऐसे हैं कि लोगों के इल्म में आ रहा है तो नमाज पढ़ेंगे, ताकि ये लोग ये ना समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ता, और तन्हा हो वहाँ कोई देखने वाला मौजूद न हो तो नमाज को छोड़ देते हैं, या नमाज के मामले में गफलत से काम लेते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, वक्त पढ़े, कभी वक्त में पढ़ी, कभी वक्त से उसको जो है छोड़ भी दी, ये, या जैसी तवज्जो और ध्यान से और जो है जी लगा कर पढ़नी चाहिए वैसी पढ़ता नहीं है, ये सब वो नमाज से गफलत के अंदर दाखिल है। या जैसे उसके जो है फराइज वाजिबात सुनन मुस्तहबात उनको अदा करने का एहतमाम करना चाहिए वैसा एहतमाम नहीं करता। बहुत से लोग वक्त मिलता है तो पढ़ते हैं, वरना दुनियावी कामकाज अगर आ गया तो नहीं पढ़ते, वो भी इसमें दाखिल है। वैसे ये जो बातें बयान की गई हैं असल तो हरकतें हैं किसकी? मुनाफिकीन की, लेकिन इनको बयान करके मोमिनीन को भी मुतनब्बेह किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि भाई ये मुनाफिकीन के काम हैं, अपने आप को इनसे बचाओ, समझाया कि ताकि तुम पर कहीं ये लेबल न लग जाए। तो फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस बड़ी खराबी है, ये वैल कहते हैं, बड़ी बड़ी अजाब के लिए भी इस्तेमाल होता है, बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत करते हैं। अल्लदीन हुम युराउन, जो दिखावा करते हैं, दिखलाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। बहुत से वो होते हैं कोई देख रहा है तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ती, या देख रहा हो तो ज़रा अच्छी तरह पढ़ते हैं, और कोई देखने वाला ना हो तो ऐसे जो है ठोंगे मुर्गा की तरह ठोंगे मार करके जल्दी जल्दी पूरी कर देते हैं। तो गोया इबादत के अंदर दूसरों पर नज़र। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब देहली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रियाकार जो है वो बात चीज़ों में शिर्क से भी आगे बढ़ करके है, इसलिए कि रियाकार जो है इंसानों को, यानी जिनको दिखलाने के लिए ये अमर कर रहा है, अल्लाह के मुकाबले में तरजीह दे रहा है। ये वो तो जानता है कि अल्लाह भी देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को की खातिर नहीं करता अमल, बल्कि इंसानों को दिखलाने के लिए करता है। तो क्या अल्लाह ताला के मुकाबले में वो इंसानों को बढ़ावा देता है, तरजीह देता है, तो वो मुशरिकीन तो शरीक करते हैं। ये तो एकदम कदम आगे निकला। फिर ये कि शिर्क करने वाले आम तौर पर उनकी जो दुनियावी जरूरतें होती है उस मामले में जो है अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक करते हैं, जैसे औलाद मांगी किसी दूसरे के पास, इसी तरह जो है रोजी के लिए किसी और के पास सवाल किया। लेकिन ये तो खालिस इबादत नमाज जो अल्लाह के लिए पढ़ी जानी चाहिए उसको दूसरों को दिखा लेने के, गोया ये तो उससे भी एक कदम आगे गए। ये दिखलावे वाला शिर्क जो है वो बहुत खतरनाक है। हज़रत शाह साहब शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब फरमाते हैं बहरा अल्लज़ीन हुम युराऊन जो दिखावा करते हैं, वयमनऊन अलमाऊन और दूसरों को मामूली चीज देने से भी इनकार करते हैं। एक तो आमाले खैर जितने भी करते हैं दिखलाने के लिए करते हैं कि मुनाफिकीन की खासियत है, और दूसरा माउन कि वो माउन से भी इनकार करते हैं। माउन के क्या मतलब? इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की एक रिवायत और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि माउन से मुराद यहाँ पर ज़कात है, यानी वो ज़कात अदा नहीं करते। असल माउन तो कहते हैं थोड़ी सी चीज़ को, चूँकि माल के अंदर जो ज़कात फर्ज की गई है वो 40वां हिस्सा है माल का, 2.5%। तो ये 2.5% जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ है, लेकिन 2.5% होने के बावजूद लोग उसको अदा नहीं करते बहुत सी। तो गोया ये ज़कात अदा नहीं करते मुनाफिकीन। उनके ऊपर जो दूसरे हुकूक हैं जिनके तलब करने वाले बंदों में से हैं, उनको तो वो उनके डर से अदा करते हैं, बंदों के डर से कि अदा नहीं करेंगे तो लोगों में वो हमारा फजीता करेंगे, समझाए कि नहीं रुसवाई होगी, या हाकिम के यहाँ वो जो है नालिश कर देंगे, फरियाद करेंगे, तो उसकी वजह से लोगों में हमारा नाम बदनाम होगा। लेकिन ज़कात नहीं देते तो किसको पता चलता है? वो अल्लाह से नहीं लड़ते इसलिए ज़कात अदा नहीं करते। तो बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और इब्न अब्बास की एक रिवायत में उससे मुराद ज़कात ली गई है, और इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी रिवायत और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माउन से मुराद वो जो मामूली चीज़ें जिसके आपस में इस्तेमाल के लिए आरियत के तौर पर लेने देने का लोगों में क्या होता है, दस्तूर होता है। पड़ोसी आपस में भाई ज़रूरत पेश आ गई, आपके यहाँ मेहमान ज़्यादा आ गए, आपके यहाँ कोई बड़ा पतीला नहीं है, पड़ोसी के पास गए, ज़रा हमारे यहाँ 5-10 मेहमान हो गए और इतना बड़ा पतीला है नहीं जिसमें हम, तुम्हारा बड़ा पतीला दे दो, तो देते हैं, समझाया कि नहीं। या और चीज़ें जो इस्तेमाल की होती, डोल दे दो, या आग, कभी आग की ज़रूरत पेश आती उस ज़माने में उसका आमतौर पर होता था, आग दो, पानी दो, नमक दो, तो इन चीज़ों को आमतौर पर पड़ोसी आपस में जिनके लेने देने का आरियत के तौर पर लेने देने का रिवाज है वो भी ये लोग देते नहीं बुखल की वजह से। और इसी में ये जो अहले हिरफत और अहले सनत होते हैं पेशावर, उनकी आपस के औजार भी इसमें आ जाते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन है, दूसरे इलेक्ट्रिशियन को ज़रूरत पेश आई किसी औजार की तो आपस में देते लेते हैं, लेकिन अगर कोई न दे तो इसी माउन का मिस्ताक बनेगा, दस्तूर यही है। या एक प्लम्बर है, दूसरे प्लम्बर को किसी औजार की ज़रूरत पड़ी तो वो लोग ये आपस में एक दूसरे को अपने औजार देते हैं, लेकिन अगर कोई न दे तो ये इसी माउन में दाखिल हो जाएगा। या कोई अहले इल्म है तो अहले इल्म आपस में कलम है, कागज़ के छोटे दस्ते, 2-4 कागज़, दो कागज़ की ज़रूरत है मुझे, वो कोई होने के बावजूद न दे, कलम न दे लिखने के लिए। बहुत सी जगह आप जो किसी को ज़रूरत पेश आती जब मैं देखा कलम नहीं, आप कलम दे दो, वो क्या मैं नहीं देता, तो ये उसी माउन में दाखिल होता है। आम तौर पर ऐसी चीज़ से मना नहीं किया जाता, तो बहरहाल ये भी इसी हुक्म में है। तो मामूली चीज़ें या आम तौर पर जो चीज़ें एक दूसरे को आरियत पर दी जाती हैं ये उसको देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी गोया ही मुनाफिकीन की खसलत के अंदर दाखिल है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें बतलाई कुफार की हैं वो भी और मुनाफिकीन की हैं वो भी, एक अहले ईमान को चाहिए कि वो अपने आप को इन बुराइयों से बचाने का एहतमाम करें ताकि इनके हक में जो वईदें आई है उसका मिस्ताक बनने की नौबत ना आए। अल्लाह तबरक तआला हम सबको इन चीज़ों का एहतमाम नसीब फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک हमारे दिलों का, हमारी दिलों का सुरूर हमारी उम्मीदों से बढ़ करके और हमारे लिए सत्य जारिया बना दे। अल्लाह आज की इस मजलिस में जिन दो बच्चों ने अपने हिफ्ज की तकमील की है उनको भी इंतहा कबूल फरमा। जिस तरह तूने उनके सीनों को कुरानी अल्फाज से मुजयन फरमाया, कुरानी उलूम व मारिफ से भी उनको माला माल फरमा, कुरानी आमाल सालेहा का उनको एहतमाम नसीब फरमा, कुरानी अखला के फाजिला से उनको आरास्ता फरमा। रात और दिन की मुख्तलिफ घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तिलावत करके अल्लाह उसका हक़ हिफ्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हिफ्ज कुरान की तकमील पर जो वादे तूने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से दिए हैं, उन वादों को इन बच्चों, इनके वालिदैन, इनके असातिज़ा, इनके मुरब्बियों और इनके अहले ख़ानदान के हक़ में पूरा फरमा। जिन्होंने भी अपने औलाद को इल्म के अंदर लगा रखा है, हिफ्ज में लगा रखा है, अल्लाह उनके लिए हिफ्ज की तकमील को आसान फरमा। अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, कैदो बंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा। अल्लाह मुकदमात में माखूजों को बरी फरमा, जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है अल्लाह उसको उससे नजात अता फरमा। अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा, बेसहाराओं को सहारा अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनकी औलादें नाफरमान हैं उनकी औलादों को तू तेरा और उनके माँ बाप का मुती व फरमा बदार बनाकर माँ बाप की आँखें ठंडी फरमा। जिनके औलादें शादी की उम्रों को पहुँच चुकी हैं सालेह जोड़ अता फरमा कर उनके निकाह की सूरतें पैदा फरमा। अल्लाह जिनके निकाह तो हो चुके हैं लेकिन इज़दिवाजी ज़िंदगियाँ तलखी का शिकार हैं, अल्लाह उनको इज़दिवाजी ज़िंदगी की खुशगवारियाँ अता फरमा। अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो उसके ईमान व इस्लाम की, जानो माल की, इज्जत व आबरू की, अहलो आयाल की, तिजारत व ज़राअत व कारोबार की, हर चीज़ की पूरे पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है अल्लाह उसकी भरपूर नुसरत फरमा, जालिम के हाथ को जुल्म से रोक दे। अल्लाह इस मुल्क में अमन अमान की फिजाएं कायम फरमा, यहाँ बसने वाली कौमों में आपस में मोहब्बत, रवादारी और हुस्ने सलूक को आम फरमा। अल्लाह जो लोग इनके दरमियान बुग्ज़ और अदावत के बीज बोकर अपने नारवा मकासिद को हासिल करना चाहते हैं उनकी साजिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह इस मुल्क में शायर इस्लामिया की पूरे पूरी हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मदारिस अरबिया, मकातिब कुरानिया, मराकिज़ दीनिया, खानकाहों की, मसाजिद की, तबलीगी और दीनी मराकिज की, और अल्लाह तेरे दीन का काम जहाँ कहीं जिन शक्लों में हो रहा है और तेरे यहाँ मकबूल और पसंदीदा है सब की हिफाजत फरमा, काम करने वालों की हिफाजत फरमा, उनको इखलास, इस्तिकामत, हिम्मत और हौसला अता फरमा, उनके रास्ते की रुकावटों को दूर फरमा, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा, उनकी ज़रूरियात की किफ़ालत फरमा, उनको मुखलिस और फ़ाल काम करने वाले अफराद अता फरमा, इन कामों को अंजाम देने के लिए उनके मुनासिब असबाब वसाइल अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर और भलाई तुझसे मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमा, और जिन शुरू और बुराइयों से पना चाहिए उससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, आज तक तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं हुए, अब भी और आइंदा भी महरूम न फरमा। रब्बना जीना कताइबीना फला तरुद्दना खाइबीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।